بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ. السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahar.tv.ir. اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے پاکستان کی نئی حکومت، ترجیحات اور درپیش مسائل. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جی ناظرین، پاکستان میں میاں نواز شریف کی قیادت میں نئی حکومت نے باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. 5 جون کو نواز شریف نے بحیثیت وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا اور جمعرات 6 جون کو ان کی کابینہ کی تقریب حلف برداری انجام پائی. میاں نواز شریف نے ایسے عالم میں حکومت پاکستان سنبھالی ہے کہ ایک طرف توانائی کا بحران ہے، شہروں اور دیہی علاقوں میں بجلی کا فقدان ہے، اور دوسری طرف کمر توڑ مہنگائی ہے. اس کے علاوہ امن و امان کی صورتحال بھی زیادہ اچھی نہیں ہے. میاں نواز شریف نے انتخابی مہم کے دوران جو وعدے کیے تھے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ اگر انہیں حکومت بنانے کا موقع مل گیا تو پھر ڈرون حملے نہیں ہوں گے. لیکن 6 جون کو ان کی کابینہ نے حلف اٹھایا اور جمعہ 7 جون کو امریکہ نے ڈرون حملہ کر دیا. ڈرون حملے کا مسئلہ بھی ان کے سامنے ایک اہم چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ میاں نواز شریف کی حکومت کو درپیش اہم ترین مسائل کیا ہیں، داخلہ اور خارجہ پالیسی میں ان کے سامنے مہم ترین چیلنج کیا ہیں، مشکلات، مسائل اور چیلنجوں کے مقابلے میں ان کی حکمت عملی کیا ہوگی، طالبان کے مسئلے سے وہ کس طرح نپٹیں گے، طالبان کے ساتھ آشتی اور صلح کے عمل کو آگے بڑھانے میں فوج اور اپوزیشن کا کتنا تعاون انہیں حاصل ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ڈرون حملوں کے سلسلے میں ان کی پالیسی کیا ہوگی. اور اگر وقت ملا تو تھوڑی گفتگو پرویز مشرف کے بارے میں بھی ہوگی کہ اب ان کا کیا ہوگا، ان پر مقدمہ چلے گا، قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے، یا پھر جس طرح ایک ڈیل کے تحت پرویز مشرف نے میاں نواز شریف کو سعودی عرب بھیج دیا تھا اسی طرح کوئی ڈیل ہو جائے گی اور اس بار میاں نواز شریف پرویز مشرف کو ملک سے باہر بھیجیں گے. اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسلام آباد اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی ہے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار فوزیہ شاہد کو. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے آج کے پروگرام میں حصہ لیں گے لندن میں مقیم بر صغیر کے ممتاز دانشور اور تجزیہ نگار ڈاکٹر مخصوص صدیقی، اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے آج کے پروگرام میں شامل کیا جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے سرگرم کارکن ابرار علی رضوی کو. لیکن پہلے ہماری رپورٹ.
پاکستان میں وزیر اعظم نواز شریف کی 25 ارکان پر مشتمل کابینہ نے حلف اٹھا لیا. کابینہ میں 16 وفاقی وزراء جبکہ 9 وزرائے مملکت شامل ہیں. پاکستان کے عوام نے گزشتہ 11 مئی کو طالبان کی دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اور جان کی بازی لگا کر وسیع پیمانے پر پولنگ میں حصہ لیا، اور اس طرح جہاں انہوں نے جمہوریت کے فروغ کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری ادا کر دی، وہیں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے عمائدین کو اپنا پیغام بھی سنا دیا. بہرحال اب نئی حکومت تشکیل پا چکی ہے اور میاں محمد نواز شریف کے سامنے گوناگون مسائل میں گرفتار پاکستان ہے، جسے ترقی کی راہ پر لے جانے کی ذمہ داری ان کے دوش پر ہے. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اس سے پہلے بھی 2 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، لہذا انہیں سیاسی حالات کا بخوبی اندازہ ہے، جبکہ ان کا تعلق بڑے صنعتکار گھرانے سے ہے، لہذا وہ صنعتی و اقتصادی شعبے کے حالات سے بھی بخوبی واقف ہیں. گزشتہ حکومتوں کے دوران فوج سے نواز شریف حکومت کی کشیدگی رہی، اور فوج کو بیرکوں تک محدود رکھنے کی کوششوں میں نواز شریف کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا تھا. نواز شریف نے بار بار یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ملک کا سربراہ آرمی چیف نہیں وزیر اعظم ہوتا ہے، لیکن فوج نے ان کی اس کوشش کو زیادہ پسند نہیں کیا۔ نواز شریف نے اس بار بھی انتخابی مہم کے دوران اپنا یہی موقف دہرایا۔ اس وقت ان کے سامنے یہ بڑا چیلنج ہوگا کہ فوج کے ساتھ رشتے خوشگوار رکھتے ہوئے وہ کیسے اپنی پالیسیوں کو نافذ کرتے ہیں۔ البتہ اس وقت پاکستان میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ خارجہ سیاست اور معاشی شعبے میں فوج کا کردار کم ہو رہا ہے۔ نواز شریف کو اس وقت کافی حد تک مضبوط ہو چکی عدلیہ کا بھی سامنا ہے، اور عدلیہ کے سلسلے میں ان کا ماضی کا رویہ تنقیدوں کا نشانہ بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں اس وقت میڈیا بھی کافی حد تک آزاد ہو چکا ہے، اور عمائدین مملکت پر تنقیدوں کے تیر چلانے میں میڈیا کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ داخلی سطح پر نواز شریف کی حکومت کا سب سے بڑا امتحان اقتصادی شعبے میں ہوگا۔ پاکستان کی معیشت انتہائی مشکل دور میں ہے، اور گزشتہ برسوں میں اس کی شرح نمو محض 4% رہی ہے، جسے سالانہ 7% کی شرح تک پہنچانا آسان نہیں ہوگا۔ پاکستان کو انرجی کے شعبے میں بہت بڑے بحران کا سامنا ہے۔ ملک میں 18-18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے جہاں عوام کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے، وہیں انرجی کے بحران کی وجہ سے نواز شریف کے انتخابی حلقے سمیت متعدد علاقوں میں صنعتیں بند ہو گئی ہیں۔ انرجی کے بحران کو حل کرنے کے لیے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے فوری اقدام کرتے ہوئے چیئرمین وابڈا اور تقسیم کار کمپنیوں کے سربراہ تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے توانائی کے بحران کے خاتمے اور سستی بجلی کی فراہمی کے تمام پاور اسٹیشنز کو جلد از جلد کوئلے پر منتقل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور بجلی چوری برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ اقدامات مسائل کی طرف نواز شریف کی توجہ مرکوز ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن یہ بھی یقینی ہے کہ انرجی کے بحران کو حل کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت پاکستان کے سامنے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کو فوری طور پر مکمل کرنے کے علاوہ کوئی بہتر راستہ نہیں ہے۔ پاکستان کو انرجی کے بحران سے نجات پانے کے لیے اس پائپ لائن کی اشد ضرورت ہے، لیکن اس سلسلے میں امریکہ کی ناراضگی بھی یقینی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف حکومت کس طرح گیس پائپ لائن پر آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ امریکی اعتاب سے خود کو محفوظ رکھ پاتی ہے۔ نواز شریف کے سامنے ڈرون حملوں کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے۔ امریکہ ڈرون حملوں کی کارروائی سے بہت مطمئن ہے، اور طویل فاصلے پر بیٹھ کر امریکی اپنے مطلوبہ نشانے کو تباہ کر دیتے ہیں، اور انہیں خود کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑتا۔ ڈرون حملے بند کرنے پر امریکہ کو تیار کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہوگا۔ مسلم لیگ نون نے امریکہ کے خلاف عوامی نفرت کا احساس کرتے ہوئے یو ایس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے ساتھ پنجاب میں اپنے تمام مشترکہ پروجیکٹ روک دیے تھے، لیکن جب پاکستان کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے قرضوں کی بھی احتیاج ہو تو اس صورت میں امریکہ کی ناراضگی مول لینا آسان نہیں ہوگا۔ البتہ یہ بھی طے ہے کہ اگر پاکستان نے امریکہ کی رضامندی کو ملحوظ رکھا تو مشکلات کا بنیادی حل نہیں نکل سکتا۔ پاکستان کے سامنے ہندوستان اور افغانستان سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کا چیلنج بھی ہے، اور اس سلسلے میں فوج اور سیاسی قیادت کے درمیان مکمل ہم آہنگی سے ہی کامیابی مل سکتی ہے۔ مختصر یہ کہ میاں نواز شریف کے سامنے مسائل کی طویل فہرست ہے، اور ان مسائل سے نمٹنا ہی ان کا سب سے بڑا امتحان ہے۔
جی ہاں ناظرین، پاکستان کی نئی حکومت کے تعلق سے ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پاکستان کی سینئر تجزیہ نگار فوزیہ شاہی صاحبہ موجود ہیں۔ فوزیہ شاہی صاحبہ، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی، پاکستان میں حکومت بن گئی، انتقال اقتدار کا عمل مکمل ہو گیا۔ پاکستان کی تاریخ کی اس اہم رودات کو آپ کس نگاہ سے دیکھتی ہیں؟
بہت شکریہ۔ اور دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک پاکستان میں تسلسل سے کبھی بھی حکومت نہیں رہی، تو میرے خیال میں پہلا تو اقدام یہی ہے، اور اس میں نہ صرف پچھلی جو پارلیمنٹ تھی اس کو ایک کریڈٹ ملتا ہے، بلکہ لیڈر آف اپوزیشن اور صدر آصف علی زرداری دونوں کو جو ہے بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے ایک ایسا سسٹم بہرحال ایک ڈیولپ کر دیا کہ ایک بہتر طور پہ انتقال اقتدار ہوا۔ اور جو کچھ عرصہ پہلے جب آپ ہی کے پروگرام میں ذکر ہو رہا تھا، تو اس وقت آپ کو علم ہوگا کہ بار بار یہ آواز آ رہی تھی کہ شاید انتخابات نہیں ہوں گے۔ اب وہ جو ایک چیلنج تھا سب سے بڑا میں سمجھتی ہوں، کیونکہ پاکستان میں اس طرح کی صورتحال ہوتی رہی، اور جس آپ نے مسائل کا ذکر کیا ہے اور بہت زیادہ گمبھیر مسائل ہیں، تو اس کے پیش نظر یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید آگے ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ عوام کا جو شعور ہے اور سیاسی جو تدبر ہے جو سیاستدانوں میں پایا جاتا ہے، اس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایک بہتر طور پہ آگے جو ہے پیش رفت ہو رہی ہے۔ آپ نے جو اس وقت بات کی ہے، یقیناً پاکستان کے حوالے سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں، تو پچھلے 10 سالوں سے، بلکہ ہم یہ اس سے بھی زیادہ عرصہ کچھ کہیں گے، पाकिस्तान संगीन तरीन मुश्किलात से दो चार है, और ख़ास तौर पर जब से ये अफगानिस्तान में जो एक जंग का सिलसिला जारी है, पाकिस्तान उसमें बराह रास्त उसमें किसी ना किसी तरह उसको, आपको मालूम है कि शदीद तरीन नुकसान से दो चार हो रहा है। सबसे ज़्यादा हमारे जो शहर जो हैं वो गैर महफूज हो चुके हैं। फिर उसके अलावा आपने ये देखा होगा, याद होगा कि स्वात और उस पर जो ऑपरेशन किया गया बालाकंड में, और ये एक तसलसल है कि पिछले जो 2001 के बाद जारी है इस मुल्क में। तो मैं ये समझती हूँ कि आने वाले वक्त में मियां नवाज शरीफ के दौर में, अभी अगर ये कुछ कहा जाए कि वो फौरी तौर पे किसी किस्म के कोई मसाइल से निपट लेंगे, इतनी आसान बात नहीं है। आपने जिन मसाइल का जिक्र किया है, ख़ास तौर पे अगर आप सिर्फ ड्रोन का देखें, तो आपको याद होगा कि जिस दिन इंतखाबात हुए उससे अगले दिन ही जो है एक ड्रोन हमला किया गया, और वाज़े तौर पर अमरीका के सदर ओबामा को खुद उसने ये कहा कि ड्रोन जो है वो बंद नहीं होंगे। ये एक खुली जो है वो वार्निंग कह लेना चाहिए, या एक नई हुकूमत के लिए जो पता चल रहा था कि मियां साहब की हुकूमत बन रही है, एक वाज़े तौर पे पैगाम दे दिया गया था कि वो अपना काम जो है, अपना ऑपरेशन जो है, जो भी उन्होंने करना है वो जारी रखेंगे। ये पाकिस्तान की वो सोच जो है जो मियां साहब की जानिब से भी आई थी, तहरीक इंसाफ की जानिब से भी आई थी, और अगर हम पिछली दफ़ा देखते हैं तो पार्लियामेंट की जानिब से कई जो मुश्तरक इजलास हैं उसमें ना सिर्फ मजम्मत की गई थी और उसमें मुतालबा किया जाता रहा था कि ड्रोन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दी जाए ताकि वो बेहतर तौर पर खुद अहदाफ का तयन करते हुए जिसमें जो बेगुना लोग हैं वो ना मारे जाएँ और सिर्फ टारगेटेड किलिंग की जाए। तो लेकिन यह है कि अमेरिका की जानिब से एक खुले आम जो है वो बात कर दी गई, और उसको अगर ये कहा जाए कि अक़वामे मुत्तहिदा का भी उसको शेल्टर हासिल है तो गलत नहीं होगा। उसको वाज़े तौर पे उसने एक तो हुकूमत को पैगाम दे दिया है कि इस जानिब आप ना आए, ये हमारा एक दायरा कार है और हम इसमें करते रहेंगे। अब चैलेंज आ जाता है हुकूमत में, मेरा ख्याल है कि जिस तरह मियाँ साहब ने भी बात की है और उनकी जो काबीना के दूसरे लोग जो हैं, जो भी कल जिन्होंने हलफ उठाया है, उन्होंने भी ये कहा है कि जहाँ तक दहशतगर्दी है या ड्रोन हमलों का ताल्लुक है, हम तमाम जो उसके फ्रीकैन कह लीजिए या तमाम जो स्टेक होल्डर हैं या तमाम सियासी जमातें हैं उनके साथ मुशावरत के साथ आगे जाएंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान को अपनी रिट बरकरार रखने के लिए और इसके साथ साथ आवाम ने जो मैंडेट दिया है, आवाम ने वाज़े तौर पर मैंडेट दिया है दो चीज़ों पर। एक तो तवानाई के हवाले से तो खैर वो भी हम उसको इकोनॉमिक उसमें ले रहे हैं, इकोनॉमिक और दूसरी दहशतगर्दी, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसने पाकिस्तान का अगर ये कहा जाए कि उसकी असास ख़त्म कर दी है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई में इजाफा हो रहा है, उसकी जो मुश्किलात हैं आम शख्स की बढ़ रही हैं, और उसी से ही ये तमाम चीज़ें रिलेटेड हैं जो हमारी सरहद पे अफगानिस्तान में हो रहा है या अफगानिस्तान से अंदर पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की जा रही है। और मैं बिल्कुल इसमें क्लियर हूँ कि या तो हुकूमतें या हमारे हुक्मरान जो हैं वो जानना नहीं चाहते, या वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि ये तालिबान का या अफगानिस्तान का या ये जो दहशतगर्दी का बुनियादी इसका पस मंज़र क्या है, इसके पीछे कौन है, पिश्त पनाई कौन कर रहा है, चंद जो नाम सामने आते हैं क्या वही नाम है या इसके दरे पर्दा कुछ और हैं। और मैं काफ़ी हद तक कन्विंस्ड हूँ, और बहुत सी ऐसे शाहिद भी मिलते हैं कि जब ये बात की जाती है कि कोई किसी किस्म की बैरूनी मदाखलत की बात की जाती है, अमेरिका की जानिब से भी इशारे किए जाते हैं कि उसकी कोई एजेंसीज वहाँ काम कर रही हैं, तो मैं समझती हूँ कि उस तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और कहाँ तक ये हमारी हुकूमत कर सकेगी, और इसके लिए यकीनन जैसे भी आपने बात की है आपकी रिपोर्ट में था कि इस वक्त हम समझते हैं कि पाकिस्तान के तमाम सियासतदान, अवाम, अस्करी कुव्वत और जो अस्करी क्यादत, उसको एक पेज पे आना पड़ेगा। अब आने वाले वक्त में ये हालात बताएंगे, क्योंकि एक जो चीज़ पहले दिन दिखाई दी है जिस दिन वज़ीर आज़म ने वोट लिया है कामयाबी का पार्लियामेंट से, उसी दिन जो ओपोजिशन की जानिब से जो मियाँ जो मखदूम अमीन फहीम थे उन्होंने अपनी तकरीर में एक बहुत खौफनाक इशारा दिया है, उसमें जहाँ उन्होंने मुबारकबाद दी है मियाँ नवाज शरीफ को, वहाँ उन्होंने एक इशारा किया है कि कुछ एजेंसी की तरफ उनको भी मुबारकबाद दी है। मैं ये समझती हूँ कि ये एक आने वाला वक्त बताएगा कि ओपोजिशन और हुकूमत के ताल्लुकात जो हैं किस नहज पे कहाँ तक इकट्ठे चलते हैं। वो एक जो इशारा है उसने पूरे पाकिस्तान की पूरी कौम की तोजो एक दफ़ा हासिल की है कि वो मुबारकबाद किस हवाले से थी। और मैं समझती हूँ कि पिछले 5 साल चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, अब मखदूम अमीन फहीम का जो ये इशारा है یقیناً کسی تجربے کی بنیاد پہ ہوگا. وہ انہوں نے اتنے ایک سیزنڈ پولیٹیشنز ہیں پارلیمنٹ میں, وہ کسی طرح کی غیر ذمہ داری کی بات نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک سوال جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ وہ کیا صورتحال ہوگی, کیا پارلیمنٹ میں اس کے اثرات دکھائی دے رہے ہیں یا پارلیمنٹ کے باہر اس کے اثرات دکھائی دے رہے ہیں, یا ایجنسیز کی جب بات کی جاتی ہے تو کون سی ایجنسیز شامل ہیں, کیا پاکستانی ایجنسیز ہیں, بیرون ملکی ایجنسیز ہیں, بے شمار صورت جو ہے سوالات جو ہیں وہ پیدا ہونے لگ گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود پورے ملک کے عوام کی توقعات جو ہیں وہ آنے والی حکومت پہ ہیں, اور جس طرح پاکستان مسلم لیگ نواز نے انتخابات سے پہلے جو وعدے کیے تھے توقع کی جا رہی ہے, خاص طور پہ جو توانائی کا کرائسس ہے. اس حوالے سے تھوڑی سی ایک بات ضرور یہاں واضح ہونی چاہیے کہ پاکستان میں توانائی کا بحران نہیں ہے, اس کی صرف قیمتوں کا تعین اور سرکولر ڈیٹ جو ہے, کیونکہ ابھی بھی پاکستان کے جو اعداد و شمار ہیں اگر وہ پوری اپنی پیداوار کرتے ہیں, بجلی حاصل کرتے ہیں, تو 22,000 سے 23,000 میگا واٹ جو ہے بجلی حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن پرابلم جو سب سے زیادہ یہ ہے, جو ابھی تک ہماری جو ضرورت ہے وہ 16,000 سے 17,000 ہے, لیکن پرابلم صرف یہ ہے کہ ہم جو سبسیڈائز جو بجلی دی جا رہی ہے اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ اس کی صورت میں سرکولر ڈیٹ بھی ختم ہو سکتا ہے.
جی بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں برے صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر مخصوص صدیقی صاحب موجود ہیں. صدیقی صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
صدیقی صاحب, پاکستان میں پہلی بار ایک منتخب حکومت نے اپنی قانونی مدت پوری کی, اقتدار سے ہٹی, عبوری حکومت قائم ہوئی, انتخابات ہوئے, نتیجہ سامنے آیا, تھوڑا بہت اعتراض بھی اس سلسلے میں کیا گیا, لیکن مجموعی طور پر انتقال اقتدار کا جمہوری عمل کامیاب بتایا جاتا ہے, اور انتخابات میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی جماعت نے بغیر کسی پیچیدگی کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا. کریڈٹ کسے دیں گے آپ؟
اس کا کریڈٹ میں سب سے زیادہ تو عوام کو دوں گا, اور اس سے اب یہ عوام 60% عوام نے جو ووٹ اپنے دیے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں اس وقت, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو عوام میں جو شعور پیدا ہوا تھا اور جو جس جوش و خروش سے انہوں نے ووٹ دیا, اس کے باوجود کہ دہشت گردی کا اور اتنا زیادہ خطرہ تھا اور ہو رہی تھی اور قتل وغیرہ چل رہے تھے الیکشن کے زمانے میں, اس میں جو سب سے زیادہ جن لوگوں نے وہ کام کیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف, اس کی وجہ سے عوام اتنے زیادہ تعداد میں آئے, اور خاص طور پہ نوجوان طبقہ نے آ کے ووٹ دیا. تو یہ تو اب پچھلے 5 سال میں جو پاکستان کا حشر ہوا ہے اس کا جو پازیٹیو جو پہلو میں یہ دیکھتا ہوں ہے کہ اب لوگوں کو کچھ سمجھ میں آ گیا ہے کہ جب تک کہ وہ باہر آ کے اپنا جو بھی ان کا بحیثیت پاکستانی شہری کے جو حق ہے وہ ادا نہیں کریں گے تو یہ مسئلے مسائل چلتے رہیں گے. تو پہلی تو چیز یہ تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ کراچی جیسے شہر میں جہاں پہ ایم کیو ایم کے زیادہ تر سپورٹرز ہوتے تھے, کہ ہر سیکٹر میں ہر علاقے میں ہزاروں کی تعداد میں ووٹ جو ہیں اس دفعہ پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو ملے, حالانکہ ظاہر ہے وہ جیت نہیں سکے لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس میں عمران خان اور ان کے ساتھیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے عوام کو بیدار کیا, اور وہ ٹھیک ہے اس دفعہ اب جو بھی آپ کہیے کہ بہرحال ظاہری طور پر یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو سب سے زیادہ ووٹ ملے, ان کے سب سے زیادہ ان کی سیٹیں تھیں. اب اس میں میں بحث میں نہیں جانا چاہتا, اب تو ان کی حکومت بھی قائم ہو گئی ہے, لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب وہ عوام کا جو بیداری اور جو شعور اور جو سمجھ جو ہے وہ کہیں مختلف ہے جو 5 سال پہلے تھی. اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی کو میں اس بات کی اس کی کہوں یعنی ان کا سپورٹ کروں گا کہ انہوں نے 5 سال इस पिछली हुकूमत को पूरे करने दिए, और वो उनकी जो थी उनकी सियासी, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कारनामा है कि जिसकी वजह से उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला कि उन्होंने ने चूंकि मुल्क को 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 बिल्कुल यानी नेस्तनाबूद करने कर दिया पिछली हुकूमत ने, तो अब आवाम को जाहिर था, उनके सामने था कि जो भी कुछ लोग आएंगे वो उम्मीद ये है कि मुल्क को अब बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे वहां से। तो बहरहाल ये जो 5 साल तक वो खामोश रहे, उन्होंने हुकूमत को चलने दिया, उससे उनका भी बहुत बड़ा फायदा हुआ, उनकी पार्टी का फायदा हुआ। तो आपके सवाल के जवाब में अर्ज करूंगा कि ये अब पाकिस्तान वो नहीं है जो आवाम पाकिस्तान नहीं है जो 5 साल पहले थे। हर अदलिया में भी देखें और फौज को भी ने इसमें किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं की, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि फौज ने मदाखलत नहीं की लेकिन फौज ने सपोर्ट किया। मतलब ये कि एक चीज़ ये होती है कि वो सपोर्ट ना करें, फौज ने सपोर्ट की, फौज ने मदाखलत नहीं की, और बहरहाल अब वो अब जमान अब अदलिया की जो अब जो जो उनकी पावर्स हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, और उम्मीद ये है कि जो पिछले लोगों ने जो जिस तरह से मुल्क को लूटा है और उसका भी कुछ ना कुछ फैसला होगा इंशाल्लाह। और ये कि दूसरी चीज़ ये थी कि ये जो जहाँ तक दहशतगर्दी का सवाल है, ये
जी
इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं अर्ज कर चुका हूँ पहले भी कि ये अमेरिका की इस खित्ते की मौजूदगी। आप ये देखें कि 2001 से पहले कोई किस्म की ना कोई खुदकश हमले होते थे, ना कोई इस तरह की जो कत्ल गारत होती थी, ना कहीं तालिबान का कुछ पता था। ये सब अमेरिका के यहाँ मौजूदगी होने से
जी
मौजूदगी से की वजह से हो रहा है। और जैसे अभी हम ड्रोन हमलों का जिक्र कर रहे थे, ड्रोन हमलों को तो हर हालत में बंद होना है। ये नहीं है कि
जी
हम सिर्फ अपने पार्लियामेंट में बैठ के शोर मचाएं और उनके अमेरिका के चार्ज डे अफेयर को बुला के उनसे उनसे एहतजाज करें कि भाई अभी कल आपने परसों हमारी काबीना मुंतखब हुई और कल आपने ड्रोन हमलों से 7 लोगों को मार दिया।
जी
तो और ऐसा भी नहीं होता। देखिए ड्रोन हमलों के बारे में जो लोग जो बात भूल जाते हैं वो कभी एक ड्रोन हमला नहीं होता। ड्रोन हमले तीन तीन चार चार दफा होते हैं उसी उसी जगह पे जहां पे पहला हमला होता है।
जी
ये सब चीज़ें छुपाई जाती हैं हम लोगों से, कि प्रेस भी हमसे ये चीज़ छुपाता है कि एक दफा ड्रोन हमला हुआ उसमें लोग मारे गए, जबकि बाकी शहरों ने आके उनको कोशिश की, मतलब ये कि बॉडीज को उठाने की या जो भी जो जख्मी है उनको अस्पताल ले जाने की। दूसरा ड्रोन हमला होता है,
जी
ड्रोन हमला फिर होता है जबकि उनको उनके जनाजे को ले जाया जाता है। तो हर एक ड्रोन हमले के साथ साथ दो दो तीन तीन ड्रोन हमले होते हैं। एक इंतहा पे ये बात पहुंच गई है। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा मसला
जी
यानी ये जो जाहिर है इकोनॉमिक मसला तो है ही, लेकिन ये जो ड्रोन हमले का मसला है ये इसको ये अब मौजूदा हुकूमत को सही तरह से इसको हैंडल करना पड़ेगा, और उनको अमेरिका को उससे कहना होगा कि ये हमको ये इस चीज उसको ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर
जी
पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, अगर पाकिस्तान उसको ड्रोन को शूट नहीं कर सकते तो उसको उतार सकते हैं। तो ये ईरान ने साबित कर दिया, आप
जी
इल्म होगा जैसा, कि अपने कंप्यूटर के और इंटरनेट के जो पावर के जरिए उन्होंने ड्रोन उतार लिया था, और उस ये भी एक दो तीन ड्रोन अगर इनके नीचे उतर जाएंगे तो फिर वो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि वो कई दफ़ा सोचेंगे इसको हमला करने के लिए।
जी
अगर अगर आर्मी जो है उसको शूट करके नहीं कराना चाहती, हालांकि मेरा तो यही होगा कि मैं तो ये चाहता हूँ कि इनके दो तीन ड्रोन शूट कर दिए जाएं, नीचे गिर जाएं, तो फिर वो भी ये सब चीज़ों में काबू में आ जाएंगी। तो ये जो ड्रोन हमले की बात है इसकी आवाम इसको बर्दाश्त करने के लिए अब तैयार नहीं है। ये जो छोटी छोटी यानी जैसे मैंने अर्ज किया कि काबीना में बैठ के कहना कि नहीं हम अमेरिका से बात करेंगे ये करेंगे, इससे अब काम नहीं चलेगा। वाकई अमेरिका को हमको वार्निंग देनी है कि आप अगर आप ये नहीं रोकेंगे तो फिर हम कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जो आपको पसंद नहीं आएगा।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब। और नाज़रीन हमारा राबिता टेलीफोन लाइन के जरिए बरकरार हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरगर्म कारकुन और मुमताज रहनुमा अबरार अली रिजवी साहब से। रिजवी साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, कहते हैं आप?
खुदा का शुक्र है जनाब। पाकिस्तान में नई हुकूमत कायम हो गई है, मियां नवाज शरीफ ने उमूर ममलकत संभाल लिए हैं, और कहा यह जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुश्किलात बहरान और मसाइल में घिरा हुआ मिला है। क्या कहेंगे आप इस बारे में?
जी जी हेलो
जी
जी
सवाल मेरा यह है कि यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को मुश्किलात, बोहरान, मसाइल, चैलेंज, परेशानियां ये गुज़श्ता हुकूमत से विरसे में मिली हैं।
आप कह सकते हैं इसे कि ये विरसे में मिली हैं और ये हमें भी विरसे में मिली थी।
जी
गुज़श्ता हुकूमत को भी विरसे में ही मिली थी।
जी
लेकिन इसके सिलसिले में मैं कंडेमनेशन के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा।
जी
सिर्फ एक रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए एक बात कहना चाह रहा हूँ कि गुज़श्ता हुकूमत ने बुरानों पर, मिसाल के तौर पर जिसमें एनर्जी है, पावर की मसला है, इसके कम से कम 10 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन पर उन्होंने काम शुरू किया हुआ था और वो अपनी तकमील के मराहिल है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो जेरे तकमील हैं। इस साल के एंड में, इस साल के मिडल में, अगले साल मुकम्मल होंगे, क्योंकि बकौल दानिश्वर जो एनर्जी का है वो ये कहते हैं डब्बे में बंद करके बिजली नहीं लाई नहीं जा सकती। लेकिन एक बात जो कमाल की है इसमें
जी,
जो इस मुल्क के लिए बायस इत्मीनान है, वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार, 65 साल की तारीख में पहली बार
जी,
एक आईनी पार्लियामेंट के वकार के मुताबिक, जमहूर की हुरमत के मुताबिक जो ट्रांजिट और जो ट्रांसफर पार हुआ है
जी,
वो उसने कौम को एक इत्मीनान दिया है और इस बात की तवक्को रखती है कौम के मौजूदा गवर्नमेंट को जिस अंदाज में, जिस खूबसूरत बावकार अंदाज में इकतदार मुंतकिल हुआ है, ये तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था।
बिल्कुल।
और ये बहुत बड़ी सपोर्ट होती है किसी गवर्नमेंट के लिए कि रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी, बावकार तरीके से हर जगह पर, हर मकाम पर कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, पार्लियामेंट के रवायात के मुताबिक, जमहूर के वकार के मुताबिक वो सारा का सारा अमल मुकम्मल हुआ है। अब रहा इसका कि ये मसाइल कैसे हल होंगे, ये मसाइल ऐसे होंगे कि जैसे जैसे गवर्नमेंट मुस्बत इकदाम उठाएगी, नहीं समझता कि कोई अपोजिशन, खामखा अपोजिशन द्वारा अपोजिशन करेगी, क्योंकि अब तो डिलीवर करना पड़ेगा, जिन्होंने डिलीवर नहीं किया उनको आपने देख लिया। ये मामला सब जानते थे
जी
कि हालात जो हैं, बोरान जो है वो ऐसे नहीं है कि जो दिनों में हट जाए, लेकिन कौम की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए कौम ने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो फैसला दिया उसे कबूल कर लिया गया और कौम की ख्वाहिश के मुताबिक अब आप सबको मिलकर करना होगा, अकेले किसी के बस में नहीं है ये कि एनर्जी का मसला हो, बेरोजगारी का मसला हो, दहशतगर्दी का मसला हो। अभी मेरे एक बाजरे अभी मैं नहीं जानता साहब थे वो कह रहे थे कि कौन हमले जा रहे हैं, भाई इतनी आसानी से टेलीविजन पे बैठ के कह देना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कर्जों में भी जकड़ा हुआ है, जो जिसकी मीशत भी तबाह है, जिसकी मीशत इस तरह है कि सुबह का खाया है तो शाम को चाहिए, शाम का मिल जाए तो सुबह की फिक्र हो, तो वहां ड्रोन हमले गिराना इतना आसान काम नहीं होता। लेकिन गवर्नमेंट को कोशिश करनी होगी, अपनी खारजा पॉलिसी में ये वकार लाना होगा और जो पिछली गवर्नमेंट ने जो माहदे किए हैं उन माहदों पर सख्ती से अमल दरामद करेगी तो कहते ड्रोन हमलों का मसला भी हल हो सकेगा। कहते चीन की दोस्ती को और पायदार करना होगा, पाक ईरान दोस्ती को, जो पाक ईरान लाइन है, गैस लाइन है, उसको मुकम्मल करके ये बताना होगा कि हमारे जो हमसाया है या हमारे ब्रदर मुल्क जो है, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे साथी हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। और उसके साथ साथ जैसे ईरान ने वहां पर ही कहते हैं गवादर पे ही आयल रिफाइनरी का मंसूबा बना रखा है, इन तमाम को जब अमल में लाएंगे फिर से बेशुमार कैसे मईशत का बोझ खत्म होगा और जब मईशत का बोझ खत्म होगा तो दूसरों को जब पता लगेगा कि हमारे घर में खाने के लिए दाने हैं, रिज़्क है, तो वो हमें आंखें कम दिखाएंगे। जब हम अपने मसाइल में घिरे होंगे वो लोग भी आंखें दिखाने में गुरेज नहीं करेंगे। क्योंकि माजी मेरा मुझे तो मैं इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं कर सकता इस वक्त, इसलिए कि माजी मुझे याद है कि इस्लामिक असेंबली जो लाहौर में हुई थी उसके जो क्यादत थी उस वक्त की, उसने जिस अंदाज में गुफ्तगू थी उस वक्त मगरिब का रवैया कुछ और था आज कुछ और है, कल अमेरिका का रवैया कुछ और था आज कुछ और है, उसकी बुनियादी वजह है कि आज हमारे यहाँ अफरा तफरी का आलम है। और मेरी दुआ ये है, और एक सियासी कारकुन की हैसियत से, एक मजबे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से, कि इस गवर्नमेंट को ये हिम्मत मिले, अल्लाह ने तौफीक दे कि इन बहरानों पर काबू पा सके, और कौम को इसका साथ देना चाहिए, और अगर ये कौम को साथ लेकर न चल सके तो ये बड़ी यानी ये पाकिस्तान की बदकिस्मती होगी, इस सबको लेकर चलना होगा। यहाँ पर अब इस वक्त किसी किस्म का इंतजार ही रह गया, अब तो ये रह गया है कि पाकिस्तान को किस तरह ऊपर लाना है, पाकिस्तान के बवकार को किस तरह उभारना दोबारा, पाकिस्तान को बवकार मुल्कों की छप में लाके कैसे खड़ा करना है, ये है मामला। और मैं बैठे से साथी कारकुन ये समझता हूँ कि जितना बड़ा मैंडेट आवाम ने मियां नवाज शरीफ को दिया है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये तारीख में पहले भी हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दो दफा पहले हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे सर्वाइव करके आई है, इसलिए कि आवाम अपने फैसले चाहती है कि जो वो खाई चाह सकते हैं उनकी तकमील है। जी
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, लाइन पे रहिएगा। फौजिया शाही साहिबा, इस वक्त अंदरूनी मामलात में हुकूमत को अहम तरीन वो मसला कौन सा है जिसका उसे सामना है?
देखिए मेरा ख्याल है कि सिर्फ अगर निशानदेही की जाए तो एक ही बात नहीं की जा सकती कि सबसे अहम क्या है, जब यूं ही जितने भी मसाइल देखते हैं वो भी अहम दिखाई देते हैं। अब बाज़ुकत बहुत छोटे मसले शायद दिखाई देते हों लेकिन वो अहमियत के हवाले से हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मसलन अभी आजकल इश्तहार जो है वो आफिया सिद्दीकी के हवाले से बहुत आने लग गए हैं, अभी जो इश्तहार जो हैं वो मिसिंग पर्सन के हवाले से आने लग गए हैं, ये भी वो चैलेंज है कि जिसको हुकूमत के लिए यकीनन उसके साथ निपटना बहुत मुश्किल होगा। जब ड्रोन की बात करते हैं तो आफिया सिद्दीकी का जो केस है वो भी इतना ही मुश्किल है जो इस वक्त अमेरिका की कैद में है। मकसद सिर्फ कहने का ये है कि तरजीहात को हुकूमत क्या करती है वो ज़्यादा अहम है, लेकिन मसाइल जो हैं तकरीबन तमाम एक जैसे हैं, शदीद तरीन है इकॉनमी का मसला जिस तरह भी बात की जा रही है, यकीनन बहुत अहम है। पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी बहुत बड़ा मसला है, पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ती हुई बहुत मसला है। अब हुकूमत की जानिब से जो तरजीहात तय की गई हैं, मसलन आप उन्होंने तीन वजारतों में तीन कमेटियाँ बनाई हैं, और जो कमेटियाँ बनाई हैं उनका बुनियादी मकसद ये है कि वो जो असल मसला है उसको आइडेंटिफाई कर सकें, और आइडेंटिफाई करने के बाद ही उससे निपटा जा सकता है। तो मैं ये समझती हूँ कि हुकूमत का यकीनन इस वक्त मियां नवाज शरीफ जो दो दफ़ा पहले वज़ीर आज़म रह चुके हैं, इसके साथ साथ अगर देखा जाए वो पंजाब के वज़ीर आला भी रह चुके हैं और इसके अलावा वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं, जिस तरह आपने अपनी बात की वो एक सनतकार भी हैं, मसाइल के हवाले से उन पर यकीनन इस वक्त अगर मुल्क में देखा जाए तो इस जैसा तजर्बाकार शख्स शायद ही कोई हो, और इसके साथ साथ अगर ये भी कहा जाए कि उन्हें बहुत साजगार फिजा जो है पंजाब में एक बड़ी हुकूमत की शक्ल में मिली है, पंजाब इस वक्त ज़ाहिर है सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ से जो उसको एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, ये वो चीज़ें हैं कि जो हुकूमत को मजबूत करेंगी, मियां नवाज शरीफ के जो है उनके बाजुओं को मजबूत करने में अहम साबित होंगी। लेकिन यहाँ ये जिक्र करना बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि इस दफ़ा पहली दफ़ा हम ये देखते हैं कि तमाम जो सूबे हैं उनके मैंडेट को बड़ी फराखदिली से तस्लीम किया गया है। मसलन खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत बनती हुई पहले दिन ये दिखाई दे रहा था कि शायद मियां नवाज शरीफ कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ जो अक्सरियत में है उसकी शायद हुकूमत नहीं बन सकेगी, छोटी जमातों के साथ वो हुकूमत बना लेंगे, लेकिन दूसरी जानेब उन्होंने जो बलोचिस्तान में इकदाम किया है उसकी अगर जितनी तारीफ की जाए कम है। पहली दफ़ा ये हुआ है कि एक ऐसे शख्स का वहाँ इंतखाब किया गया है जो ज़ाहिर है अक्सरियत में नहीं आए, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अक्सरियत में होने के बावजूद डॉक्टर मालिक जो एक बहुत ही ज़्यादा जीरक सियासतदान है, बहुत अगर ये कहा जाए कि बलोचिस्तान के मसाइल से बहुत बेहतर तौर पर आगाह हैं, तमाम वहाँ के जो कबाइल हैं या जितने भी वहाँ उसमें सियासतदान मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं उनके साथ एक बेहतर तौर पर अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये वो जो सूरत हाल है उसको साजगार तरीन सूरत हाल कहा जा सकता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए। लेकिन तरजीहात के तयन की जानिब अगर बढ़ते हैं तो सबसे पहले उन्होंने जो तवज्जो दी है, क्योंकि जो अपनी तकरीर में भी उन्होंने बात की है या उसके बाद भी जो उन्होंने जब से उन्होंने इक्तदार संभाला है तो तवानाई के हवाले से वो गालबन 5 या 6 इजलास कर चुके हैं। इक्तदार उससे जब उन्होंने अक्सरियत हासिल की थी अगले दिन उन्होंने इजलास इस पर बुलाया था, फिर काबीना के बनने के बाद फिर अपना हलफ लेने के बाद तवानाई को उन्होंने तरजीह तौर पे, क्योंकि उसी पे आपकी इकॉनमी का पहिया भी चलता है, उसी से रोजगार का तयन भी होता है, क्योंकि बेशुमार जो लोग हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं तवानाई की कमी की वजह से, बहुत से जो कारोबार जो हैं वो शदीद मुतासर हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो तरजीहात का तयन है, जो जिस तरह उन्होंने इब्तदा की है तवानाई के हवाले से, इसी तरह वो आगे जो दीगर तरजीहात है उसकी तरफ जाएंगे। अभी चंद दिन बाद गालबन 11 या 12 तारीख को कहा जा रहा है कि वो कौम से खिताब कर रहे हैं, और इससे पहले सदर पाकिस्तान एक मरतबा फिर जो है वो जॉइंट सेशन जो होता है पार्लियामेंट का उससे खिताब कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत से खतूत जो हैं उसमें वाजे होंगे, क्योंकि अभी तक जो सामने सूरत हाल आई है उसमें एक बहुत अहम जो जिसको हम मुस्बत करार दे सकते हैं कि यही कहा जा रहा है कि तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर वो आगे बढ़ेंगे। जो पिछली हुकूमत मुफाहमत की पॉलिसी का नाम देती थी वो पॉलिसी जो है आगे चलती चलाने की बात की जा रही है। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर इसी पे ही कायम रहा जाता है और आइडेंटिफाई किए जाते हैं मसाइल को तो उस पर तवज्जो दी जा सकेगी। फिर एक और जो पिछली हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया गया था उस हवाले से उसको किस तरह तरक्की दी जाएगी ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये जो बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग हैं उनकी माली इमदाद की जाती है और मेरा ख्याल है कि ये वो इसको अगर कहा जाए कि गुर्बत में कमी तो हम नहीं कह सकते लेकिन एक छोटी सी पी नट के बराबर जो है एक सपोर्ट ज़रूर उस ख़ानदान को दी जाती है कि जिसके पास बिल्कुल बुनियादी वसाइल नहीं होते। तो इस हवाले से भी गुर्बत के खात्मे के लिए हुकूमत की तरजीहात क्या होंगी, क्या इसी नोयत के प्रोग्राम आगे मजीद शुरू किए जाएंगे, इसको बढ़ाया जाएगा, ये भी अभी चंद दिन बाद जो बजट आने वाला है इसमें बहुत से जो है इसमें भी तरजीहात का तयन जो है वो किया जाएगा। और कहा यही जा रहा है कि जो डेवलपमेंट का ज़्यादा फंड है वो तवानाई के हसूल पर जो है उसका इजाफा करना इस्तेमाल किया जाएगा, जो 180 बिलियन के करीब की अमाउंट बताई जाती है कि वो रकम जो है वो फौरी तौर पे तवानाई पे खर्च की जाएगी और दीगर जो तरक्याती मंसूबे हैं उस पर अभी तवज्जो नहीं दी जाएगी। मेरा ख्याल है कि एक बेहतर सिम पे पार्लियामेंट में, और इस वक्त अगर हम ये देखते हैं तो पार्लियामेंट जो अभी काबीना भी आई है बहुत तजर्बाकार काबीना है, अगर चौधरी निसार की बात करते हैं तो वो भी तीसरी दफा वजीर बने हैं, इसी तरह अगर ख्वाजा आसिफ वहां वजीर बने हैं तो वो भी तीसरी दफा वजीर बने हैं, और जो काबीना के दीगर अरकान जो है तीसरी चौथी दफा जो है वजीर बन के आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि तजर्बा जो है वो उसकी बुनियाद पे, क्योंकि अब उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा है कि माजी में क्या गलतियां की या अभी जो हुकूमत खत्म हुई है उसकी क्या गलतियां थी, तो इन गलतियों को मद्देनजर रखते हुए वो यकीनन आगे बढ़ने की जानिब जो है
बहुत बहुत
बेहतरी की जानिब जो है वो बढ़ेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी सिद्दीकी साहब। आप मुफाहमती पॉलिसी की बात की है फौजिया शाहिद साहिबा ने, आपको ये जज्बा मुफाहमत का जज्बा पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन में कितना नजर आता है?
मेरे ख्याल में मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इस दफा जो इनकी जो सिंसियरिटी है वो कहीं ज्यादा है और समझता हूं उन्होंने महसूस किया है कि अब ये जरूरी है कि ना सिर्फ अपने अपने प्रोग्राम्स बल्कि और जमातों को साथ लेकर चलना। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ साहब की तकरीरों से यह जाहिर होता है कि अब वो पिछले वाले उनके वो एक मैच्योर पॉलिटिशियन हो गए और वो के अब वो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे। लेकिन जो असल में जो सबसे बड़ा, अगर आप मुझसे ये पूछें कि एक वाहिद जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में क्या रहा है अभी तक, तो वो मैं ये कहूँगा करप्शन का। जितने पहली चीज़ तो ये होती है कि जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं और जो इलेक्ट हो गए हैं उन्होंने जितने भी इसमें अपने इंतखाब में जितना भी खर्च किया, तो पहला तो उनका काम ये होता है कि वो जो उन्होंने रकम खर्च की वो वापस लें। तो वहाँ से करप्शन देखिए शुरू होता है। मुल्क के पास पैसे की कमी नहीं है मुझे पूरा यकीन है, लेकिन ये चूंकि लूट खसोट और करप्शन की वजह से ऊपर से लेकर नीचे तक ये चल रहा है और उससे जो है मुल्क का सत्यानाश हो रहा है, कि जब तक के नवाज शरीफ साहब एक कोई प्लान पेश नहीं करेंगे कि इस मुद्दत में मैं करप्शन को कम करूंगा, उसको कंट्रोल में लाऊंगा, ये जब तक कम नहीं होगा, आप यकीन मानिए कि अमेरिका के सामने हमारा हाथ ऐसे फैला रहेगा पैसों के लिए, और जब हम उनके उनकी माली मदद के ऊपर हम से हम अपना काम चला रहे हैं तो उनके खिलाफ हम कोई एक्शन नहीं लग सकते। ये सही बात है कि जो 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 पैसे हमको अमेरिका से मिल रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। सब जो मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि एक अपना प्लान ये पेश करे कि किस तरह से जो करप्शन है और जो मुल्क का जो पैसा लूट लूट के और बैरूनी ममालिक में भेजा जा रहा है वो उसको, और बल्कि जो जो बैरूनी ममालिक में जो पैसा वहाँ लोगों का जमा उसको वापस लाना, उसके बारे में क्या वो कदम उठाएंगे। और ये आवाम को ये चाहिए, नहीं तो गुरबत में आवाम अभी जैसे आपने सुना पड़े रहेंगे, उनको ये नहीं पता कि अगला खाना कहाँ से आना है, तो अगर जब ये नहीं होगा तो फिर वो किस कस्म यानी उनसे किसी कस्म की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। बैरूनी ममालिक में पाकिस्तानी यहाँ बहुत से हैं और बिजनेसमैन हैं जो चाहते हैं कि वहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ पे ऐसे ऐसी चीज़ें पैदा करें जिससे लोगों को वहाँ पे मुलाजमत और रोजगारी मिले, लेकिन वहाँ पे करप्शन इतना है, इतनी मुश्किलात पैदा होती हैं जिसके वजह से ये लोगों ने कोशिश की, कुछ लोगों ने जाके भी वापस आ गए। अब यानी कितनी कितनी अफसोस की बात है कि पाकिस्तानी जो 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 बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो बांग्लादेश में और मलेशिया में अपने अपने प्लांट्स और अपनी फैक्ट्रीज और वो सब लगा रहे हैं, पाकिस्तान में वो नहीं कर रहे।
बहुत
ये
बहुत
सब चीज़ें नवाज शरीफ साहब को इस पर नज़र डालनी होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। रिजवी साहब आप लाइन पर हैं जनाब?
जी
रिजवी साहब, ये मुफाहमत की बात हो रही है तो कहा यह जाता है कि पार्टी की हुकूमत के दौरान नवाज शरीफ की तरफ से पूरा पूरा तआवुन किया गया, उन्होंने अपोजिशन का रोल अदा किया, लेकिन जब भी कोई ऐसा मोड़ आया कि यह खदशा पैदा हुआ कि शायद जमहूरी हुकूमत को गैर जमहूरी तरीके से वापसी का रास्ता दिखाया जाए, तो उन्होंने मौकफ यह अख्तियार किया कि जमहूरी हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने दी जाएगी और इसमें कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, और गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत को ख़त्म करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपकी पार्टी किस हद तक तआवुन करेगी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को कानूनी मुद्दत पूरी करने का मौका फराहम करने में? 2 मिनट का वक्त है हमारे पास।
ब्रादरम, बात यह है कि इसकी बुनियाद हमने रखी
जी,
मिसाक जमहूरियत इस बात की दलील है, और मेरे ख्याल है पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा मुआहदा है ये मिसाक जमहूरियत। उसके बाद हमारा हमारे साथ जमहूरियत साहब का रवैया रहा रिकॉर्ड पर है, 6 जनवरी को जो पाकिस्तान की पूरी सियासी कुवतों ने यह फैसला दिया कि पाकिस्तान में सिवाय सिविल हुकूमत के, जमहूरी हुकूमत के अलावा किसी कुवत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये भी पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है
जी जी।
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ईमान रखती है कि जमहूरियत, तसलसल और इस्तेकाम, और तसलसल और इस्तेकाम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने सारे जेस्चर में इंतखाबात के ऐलान से लेकर निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ पावर, और जिस खूबसूरत अंदाज से ट्रांसफर करते हुए आज इस मकाम पर पहुंचे हैं कि हुकूमत अपने काम को आज से शुरू कर रही है, वो सारा का सारा पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी मकाम पर जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आला तीन मकासद के खिलाफ बात है, और पीपल्स पार्टी इस बात पे बिलीव करती है कि ये तसलसल जारी रहना चाहिए और हर गवर्नमेंट को अपनी टर्म पूरी करनी चाहिए ताकि ताकि पाकिस्तान में ये रवाज पा जाए कि जो भी हुकूमत आएगी वो अपने तसलसल और इस्तेकाम के साथ अपना काम कम कर ले। और 5 साल बाद जैसे मैंने पहले अपनी बात में कहा कि आवाम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपना फैसला दे देते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल नाजरीन, जहां तक हुकूमत और अपोजिशन के ताल्लुकात का सवाल है तो जाहिर है कि ये सियासत के तकाजे हैं, लेकिन जैसा कि मखसूस सिद्दीकी साहब और फौजिया शाह साहिबा ने इशारा किया है कि इस वक्त मुल्क जिन मसाइल और मुश्किलात से दोचार है और जिन चैलेंजों का सामना है, उससे मुल्क को निकालने के लिए अपोजिशन اور حکومت دونوں کے درمیان تال میل بہت ضروری ہے، دونوں کا تعاون بہت ضروری ہے، اور امید یہی کی جاتی ہے کہ مسائل کے حل میں، جیسا کہ پیپلز پارٹی نے یقین دہانی کرائی ہے حکومت کو کہ مسائل کے حل میں بھرپور تعاون حاصل رہے گا۔ پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir۔ اور اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔